आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
दोस्तों, 8 जनवरी 2026 से ऑस्ट्रेलिया ने स्टूडेंट वीजा के कुछ नियमों में बड़े बदलाव लेकर आए हैं। क्या कुछ इस प्रक्रिया की मुश्किलें हो सकती हैं या क्या कुछ इस प्रक्रिया में बदला है, इस पर चर्चा करने के लिए आज हमसे जुड़ रही हैं योजना पारिक। सिडनी स्थित योजना पारिक एक अनुभवी माइग्रेंट एजेंट है। लगभग 15 साल से वो इस क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। इसके अलावा वे एक क्वालिफाइड एजुकेशनल काउंसलर भी हैं। तो आज वो हमसे चर्चा कर रही हैं कि जो नए बदलाव आए हैं स्टूडेंट वीजा में, इनके क्या मायने हो सकते हैं। योजना जी, आपका SBS हिंदी में स्वागत है।
थैंक यू वेरी मच रुशाली, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर।
योजना जी, सबसे पहला सवाल हमारा ये रहेगा कि भारत को अब स्टूडेंट वीजा की जो एप्लीकेशंस हैं उसकी रिस्क कैटेगरी में सबसे गहन कैटेगरी में डाल दिया गया है, सब हाईएस्ट रिस्क कैटेगरी में डाल दिया गया है। इसके क्या मायने हैं, कौन से दूसरे देश इसमें हैं, इस निर्णय का क्या प्रभाव पड़ेगा अब जो स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए?
हाई रिस्क कंट्री का मतलब ये नहीं है, गवर्नमेंट रेफर जब हाई रिस्क कंट्री करती है तो किसी नेशनैलिटी को नहीं करती, ये अबाउट द पैटर्न्स इन द डाटा करती है। जैसे डाटा की अगर हम बात करें तो रिफ्यूजल रेट्स कितनी हाई हैं, कंप्लायंस के मैटर कितने आते हैं, डॉक्यूमेंट इंटीग्रिटी। कंप्लायंस इशू के लिए मैं आपके सुनने वालों को बता दूं, जैसे बच्चे यूनिवर्सिटियों में आते हैं और फिर लोअर लेवल के कॉलेजेस में चले जाते हैं और ये उनका कंसिस्टेंट पैटर्न होता है आउट ऑफ, तो इसलिए असेसमेंट लेवल हाई कर दिया जाता है। अभी जैसे कि तुमने बताया बिल्कुल ठीक, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश और भूटान का अभी जनवरी से असेसमेंट लेवल हाई कर दिया गया है, लेकिन इसका मतलब बच्चे ये बिल्कुल ना सोचें कि ये ऑटो रिफ्यूजल होगा। अब उनके पास प्रूफ ऑफ बर्डन हेवियर हो गई है, उनको डॉक्यूमेंट्स अब ज्यादा दिखाने पड़ेंगे। दूसरा मैं बताऊं, इट्स नॉट जजमेंट ऑन पीपल, इट्स जजमेंट ऑन पैटर्न्स। इफ द रिस्क रेटिंग गोज अप सो डज द पेपर वर्क। बहुत स्क्रूटनी वो फेस करेंगे, जैसे कि फाइनेंस के डॉक्यूमेंट उनके, वो रियल हैं कि नहीं, एक्सेसिबल हैं कि नहीं, क्रेडिटेबल हैं कि नहीं, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी बढ़ा दी है वो करेक्ट टेस्ट है कि नहीं, करेक्ट तरीके से फॉर्मेट से लिया गया है कि नहीं। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का आपके लिसनर्स के लिए बता दूं, जैसे आईएलटीएस या पीटी नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं, तो आईएलटीएस पीटी इक्विवेलेंट के स्कोर उनको वो कैसे हो। सो इफेक्टिवली अब गवर्नमेंट क्या पूछ रही है कि वी आर लुकिंग यू क्लोजली, जो आप स्टोरी बता रहे हो उसके एविडेंस दो, कंसिस्टेंट एप्लीकेशन करो।
योजना जी, इसमें ही थोड़ा आगे बढ़ते हैं, स्क्रूटनी से जो आप कहते हैं कि प्रूफ देना पड़ेगा, ये प्रूफ किस तरीके से दिए जाते हैं?
तो जब हम स्टूडेंट वीजा अप्लाई करते हैं तो हमें बेसिकली 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया पे एविडेंस दिखाने होते हैं, फाइनेंशियल कैपेसिटी, दूसरा इंग्लिश और दूसरा मैं जेन्युइन स्टूडेंट हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसकी वजह से एप्लीकेशंस रिफ्यूज होती हैं और जहां ज्यादा स्क्रूटनी होती है और अब और भी होगी, एक तो मोर डिटेल्ड बैंक एविडेंस आपका होना चाहिए, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, सोर्स ऑफ फंड कहां से है, मतलब आपके पास बैंक में जो पैसे हैं वो कैसे आए। कई बार बच्चे कंसिस्टेंसी नहीं देखते, लंप सम अमाउंट एक बार समझो किसी बच्चे के पास बैंक में फादर के 20 लाख रुपए या 25 लाख एक साथ जमा हो गए, तो अब उनको ये दिखाना पड़ेगा वो पैसे वहां पार्क्ड हैं वीजा के लिए नहीं, वो उनको कैसे यूज करेगा, तो उसका भी बैक्ड एविडेंस आप दो कि भाई कोई जमीन बेची है, कोई शेयर बेचे हैं, कोई डीड मिली है, कोई बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है। ये मैच होना चाहिए आपकी स्टोरी से, कि ये नहीं आपके पेरेंट की इनकम आप इनकम टैक्स में आप दिखा रहे हैं 4 लाख पर ईयर या 5 लाख पर ईयर और आपके बैंक में 50 लाख है, तो उनको अब वो स्टोरी जाननी है, वो जो पैसे हैं वो कहाँ से आए, आपका इंग्लिश का जो टेस्ट है जो आपने दिया वो वैलिड है कि नहीं, वेरीफाइएबल है कि नहीं, और आपने जो अपना GS स्टेटमेंट देख रहे हैं उसको अब वो बहुत फॉरेंसिकली उसको देखेंगे।
जी, तो बात करते हैं अब इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की योजना जी, कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में इंग्लिश लैंग्वेज की जो टेस्ट हैं उनमें भी रिक्वायरमेंट में बदलाव किया गया है, ये क्या बदलाव है?
ये बदलाव अभी बहुत रिसेंट तो नहीं आए हैं, एक्चुअली देयर आर 2 लेयर ऑफ चेंजेस। सो पहला जो चेंज इन्होंने दिया 23 मार्च 2024 को दिया था, कि जब इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट पे चेंज कर दिया था। तो ये स्टूडेंट वीजा के लिए पहले आयल्स या पीटी 5.5 और इक्विवेलेंट थी, जिसको कि अब बढ़ा के 6 कर दिया गया है। और एक और इसके साथ चेंज है, टेम्परेरी ग्रेजुएट वीजा, जो आमतौर पर बच्चे इसको TR बोलते हैं, जो स्टूडेंट वीजा के बाद में बच्चों को मिलता है, सब क्लास 485 के लिए भी इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट IELTS 6.5 और इक्विवेलेंट अब हो गई है। दूसरा हुआ है कि 7 अगस्त 2025 से होम अफेयर्स अब बोलता है जो टेस्ट लिए गए हैं वो वैलिड हो डिपेंडिंग ऑन वीजा सब क्लास, और दूसरा वो सिक्योर्ड टेस्ट सेटिंग में हो। पहले कुछ ऑनलाइन टेस्ट भी एक्सेप्टेबल थे, अब नहीं, अब वो जो रिजल्ट है वो सिक्योर्ड टेस्टिंग सेंटर में होने चाहिए। इस अगर आपकी बॉर्डर लाइन इंग्लिश है तो आप एलिजिबल होने से बचें, प्लान अर्ली, चूज राइट टेस्ट। सो इंग्लिश इज बेसिकली नाउ अ गेट कीपर।
जी, इसके अलावा हम बात कर रहे थे जेन्युइन स्टूडेंट एंट्रेंस स्टेटमेंट की, जो हम जिसको एक बहुत बड़ा मानक माना जा रहा है वीजा एप्लीकेशन के रिजेक्शन या एक्सेप्टेंस पर, तो इसके बारे में कुछ बताइए कि आप बता रहे थे उसमें भी एक बदलाव है।
हाँ जी, देखिए वैशाली, कान इधर से पकड़ो या इधर से, पहले इन्होंने उसका नाम GT दे रखा था, जेन्युइन टेम्परेरी एंट्रेंट क्राइटेरिया में आपको मीट करना है कि भाई आप जेन्युइनली टेम्परेरी यहाँ आ रहे हैं। एक ऑफन इट वाज लाइक अ बिग लॉन्ग ऐसे, यू नो, लंबा चौड़ा 8-8, 10-10 पेज के, तो अब वो उनको नहीं चाहिए, अब उनको जेन्युइन स्टूडेंट रिक्वायरमेंट उन्होंने कर दी, और ये 23 मार्च 2024 से शुरू हुआ था। अब उनको चाहिए मोर स्ट्रक्चर्ड आंसर। दो लाइन के आंसर में बताती हूँ। GS स्टेटमेंट में आपको अपनी फैमिली का बैकग्राउंड, आपको अपनी प्रीवियस पढ़ाई या क्वालिफिकेशन का बैकग्राउंड, आपने उससे रिलेटेड स्टडी जो चूज की है उसका बैकग्राउंड, क्यों चूज की है, ये कॉलेज यूनिवर्सिटी चूज की है उसको क्यों चूज किया है, ये कोर्स आपको फ्यूचर में क्या प्लान देगा, क्या आपको ये कोर्स आपको फ्यूचर में क्या करियर गोल देगा, ये आपको तरीके से उनको बताना है। उनको क्रिएटिव राइटिंग नहीं चाहिए, उनको एक कोहेरेंट एविडेंस बेस्ड स्टडी पाथवे का एक GS स्टेटमेंट स्टूडेंट से चाहिए।
जी, जो TR है, जो पोस्ट स्टडी वर्क वीजा सेटिंग है, उसमें भी कुछ बदलाव हैं, कोई एक्सटेंशंस हैं जो अब नहीं रहेंगे, उन पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया?
विशाली जी, मैंने मतलब अपने जीवन में सब क्लास 485 में ऐसे चेंजेस नहीं देखे। सबसे नंबर वन, एंडेड फ्रॉम मिड 24, जो 2 ईयर का एक्सटेंशन पहले मिलता था एक्स्ट्रा पोस्ट स्टडी वर्क टाइम, जो डिग्री शॉर्टेज एरिया होते थे वो हटा दिया गया है, तो कोई अब ऑटोमेटिक 2 ईयर एक्स्ट्रा एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। और 1 जुलाई 2024 से टेम्परेरी वीजा की एज लिमिट है वो रिड्यूस करके 35 कर दी गई है, लेकिन इसमें एक ट्रिक छोटी सी यहाँ बता दूं, सो 35 से 36 के बीच भी टेक्निकली आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट, अब आप TR वीजा के बाद स्टूडेंट वीजा अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपको दोबारा स्टूडेंट वीजा पे जाना है तो यू हैव टू गो ऑफ शोर। सो दीज आर वेरी बिग चेंजेस।
तो इन बदलावों के बाद योजना जी, क्या ऑस्ट्रेलिया अब भी छात्रों के लिए एक मनपसंद जगह रहेगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट एजुकेशन है?
देखो, यस, ऑस्ट्रेलिया इज डेफिनेटली बिकमिंग मोर सेलेक्टिव, नो डाउट अबाउट इट। अब जो स्ट्रॉन्ग जेन्युइन स्टूडेंट जिनके क्लियर प्लान हो, दे आर स्टिल वेलकम। एक बात और बता दूं, अगर हाई रिस्क कंट्री से भी हैं, इट डजंट मीन कि उनका वीजा रिफ्यूज होगा। डिपार्टमेंट अब ये देखना चाहती है चार ट्रेट्स स्पेशली, क्या स्टूडेंट्स के पास लॉजिकल स्टडी करियर पाथवे प्लान है, एप्लीकेशन है वो वेल डॉक्यूमेंटेड है, एक्सप्लेनेबल फाइनेंसेस हैं, फंड उनको दिखाने पड़ते हैं बच्चों को, 1 साल की लिविंग कॉस्ट, 1 साल की स्टडी कॉस्ट प्लस ट्रेवल, बैक्ड बाई सपोर्टिव डॉक्यूमेंटेशन है, अर्ली और कंप्लायंट इंग्लिश है कि नहीं, और कंसिस्टेंसी अक्रॉस एवरी डॉक्यूमेंट्स एंड स्टेटमेंट विच यू प्रोवाइड टू द डिपार्टमेंट। और देखिए, ऑस्ट्रेलिया फेवरेबल कंट्री रहेगी क्योंकि नॉट मेनी कंट्रीज ऑफर वर्क राइट टू स्टूडेंट्स। हमारे यहाँ अभी भी 24 आवर्स पर वीक के वर्क राइट्स हैं, मोर स्ट्रिक्टर हैं। इट डजंट मीन कि नहीं हम रहेंगे पसंदीदा, अभी भी रहेंगे, पर हाँ डेफिनेटली स्क्रूटनी होगी। और मैं इसको एक पॉजिटिव वे में भी लेती हूँ, जो कई बोगस फ्रॉडुलेंट स्टूडेंट होंगे फिर वो दूसरे कंट्रीज में जाएंगे। सच बताऊं तो कंसिस्टेंसी इज द न्यू क्रेडिटेबिलिटी। विनिंग एप्लीकेशंस विल बी यू नो द नॉट द लॉन्गेस्ट वन, द मोस्ट कंसिस्टेंट वन। अभी भी ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड क्लास स्टडी डेस्टिनेशन है, बट सिस्टम इज नाउ रिवार्ड्स यू नो ऑन प्रिपरेशन बेसिस, ऑनेस्टी बेसिस, एविडेंस बेसिस। उनको बढ़िया प्लान करना होगा। आपकी एप्लीकेशंस शुड मेक सेंस ऑन पेपर। तो ऑस्ट्रेलिया स्टिल वेलकम्स स्टूडेंट्स, बट नॉट द शॉर्टकट वन।
जी योजना जी, आपने समय निकाला उसके लिए बहुत शुक्रिया, और मुझे विश्वास है कि बहुत सारे हमारे सुनने वालों को इससे मदद मिलेगी।
थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू मी। एंड मैं आपकी बता दूं, मैं आपकी भी बहुत बड़ी फैन हूँ। सो थैंक्स, वेरी नाइस टॉक चैटिंग विद यू।
इस रिपोर्ट में दी गई जानकारी सामान्य है। SBS ना ही यहाँ प्रकट किए गए विचारों से सहमत है और ना ही असहमत। अपनी विशेष परिस्थिति के लिए किसी विशेषज्ञ से सलाह लें।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।